نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. فکر مندی اور غم سے نجات کی دعائیں. کون ہے دنیا میں جو یہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی غم نہیں؟ غم سے خوگر ہو انسان تو مٹ جاتا ہے غم. شعروں میں یہ بات اچھی لگتی ہے، لیکن حقیقی زندگی میں غم غم ہوتا ہے. جب دل پر غم کے سائے چھاتے ہیں، جیسے لفظ غم جو ہے نا، یہ غمام سے ہے، غم چھا جانا، اسی سے لفظ غمام ہے جو قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وَدَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ. تو وہ بادل جو چھائے رہتے ہیں، جس کو انگلش میں آپ کلاؤڈس کہہ سکتے ہیں، تو کلاؤڈس کی طرح غم بھی دل پہ چھا جاتا ہے. اور اگر پہلے سے تیاری نہ کی ہو تو اس وقت سوچتا بھی نہیں ہے کہ کریں کیا اور کیا نہ کریں. تو ہمیشہ ہی عقل مندی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ پہلے سے تیاری کر لی جائے. ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ عقل مند وہ ہے جو چھپر ڈال لے بارش ہونے سے پہلے، رائٹ؟ تو اگر ہم عقل مند ہیں تو ہم غموں کے آنے سے پہلے ایک ایسا کام کر لیں کہ جس کے بعد پھر بڑے سے بڑا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ دعائیں مانگنا. ہمارے دین کی یہی خوبصورتی ہے، دکھ ہو یا سکھ ہو، خوشی ہو کہ غم ہو، ہر ایک میں انسان کے لیے بہت ہی فائدہ ہے. تو اس میں سب سے پہلی دعا جب ہمارے سامنے ہے، اس کو آپ اپنی عاجزی، اپنے اندر بہت ہی زیادہ انکساری لا کر پڑھیں گے. اپنے آپ کو کائنات میں اور اس گلوب میں ایک نقطہ اور نقطے سے بھی چھوٹی چیز تصور کر کے، اور اللہ تعالیٰ کو اس کی وسعتوں کے حساب سے اللہ اکبر کہتے ہوئے مانگیں گے. دعا کے لفظ میں کچھ لفظ شروع میں، آپ میں سے وہ لوگ جنہوں نے پہلے یہ دعا کبھی نہیں سیکھی یا مانگی، ان کو مشکل لگیں گے، میں آپ کو ابھی سے بتا دوں، لیکن بار بار کے پڑھنے سے آسان لگتے ہیں. پہلے میں ایک ایک لفظ توڑ کے ایسے ہی پڑھوں گی کہ آپ لوگ اس کے لفظوں سے تعلق جوڑیں، پھر انشاءاللہ اس کو ہم پوری بھی پڑھ لیں گے. اللہم انی عبدک وابن عبدک، یہ جو باپ قلقلہ ہے اس کو ضرور ذہن میں رکھا کریں. وابن امتک ناسیتی بیدک مادن فی، اس پہ غلطی لگتی ہے لوگوں کو، وہ فی پڑھ دیتے ہیں اپنی رواں روی میں. فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندك ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب همی. اللهم انی عبدك وابن عبدك وابن امتك ناسیتی بیدك ماد فی حکمك عدل فی قضاؤك اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. اے اللہ، یقیناً میں تیرا بندہ ہوں، اور تیرے ہی بندے یعنی میرا باپ، اور تیری ہی کنیز کا بیٹا ہوں یعنی میری ماں. میری پیشانی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یعنی میرے مقدر کے فیصلے تو کرتا ہے. مجھ میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے، یعنی میرے ساتھ وہی ہوگا جس کا تو حکم دے گا. میرے بارے میں تیرا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے، یعنی مجھے اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچی تو بالکل پہنچنی چاہیے تھی، تو میرے معاملے میں بہت ہی بڑا منصف ہے. میں تیرے ہر اس خاص نام کے ذریعے سے تجھ سے درخواست کرتا ہوں جو تو نے خود اپنا نام رکھا ہے یا اسے اپنی کتاب میں نازل فرمایا ہے. کون سی؟ اپنا رکھا ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے غیب میں، کتاب یعنی قرآن، جتنے اس میں اللہ کے نام ہیں. या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया है, यानी चींटियाँ तुझे कैसे पुकारती हैं, तोते कैसे पुकारते हैं, मछलियाँ कैसे पुकारती हैं, सारी मखलूक तुझे जिन जिन नामों से पुकारती है उन सारों से मैं भी तुझे पुकारता हूँ। या तूने इसे इल्मे गैब में अपने पास रखने को ख़ास किया है। आप इहाता नहीं कर सकते बातों का जो भी हम पढ़ रहे हैं। 99 नेम्स ऑफ अल्लाह तो बहुत पीछे रह जाते हैं। ये तो वही बात है कि मिदाद अल कलिमात रब्बी, यानी हर खूबसूरत नाम जो तूने अपने लिए रखा, और अपने लिए जो बंदा नाम रखता है वो सबसे ज़्यादा खूबसूरत होता है। यह अपनी किताब यानी कुरान में नाजिल फरमाया, और ऑफ कोर्स रसूल की ज़ुबान पे। फिर तेरी सारी मखलूक तुझे जिन जिन नामों से पुकारती है, और इस सब के बाद भी जो नाम तूने अपने इल्मे गैब में अपने पास रखे हुए हैं, मैं दरख्वास्त करता हूँ, यानी मैं ये मांगती हूँ क्या, कि तू कुरान मजीद को मेरे दिल की बहार बना दे, और मेरे सीने का नूर, मेरे गमों का इलाज, मेरी फिक्रों का तरियाक बना दे। मुसनद अहमद की रिवायत जिल्द 1 391, और शेख अल्बानी ने इसको सही कहा है। बहुत ही ऑथेंटिक दुआ है। जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ा तो मुझे बहुत ही अनयूजल लगी। पहले तो यही लफ्ज़ नहीं समझ आते, अब्दू का और अमती का क्या है। अगर हम इसको फेमिनिन सीगों में पढ़ें ना, टेंसेज में, तो हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अमतु का व बिन तो अमती का, अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ और बेटी हूँ तेरे बंदे की, यानी मेरा बाप, व बिन तो अमती का और बेटी हूँ तेरी बंदी की, यानी मेरी माँ। इतनी बात वाज़ है। बहुत ही एक अनयूजल सी दुआ है। ऐसे लगता है कि एक इंसान बिल्कुल अपना सब कुछ खोल के अल्लाह के आगे रख देता है, और अपने आप को एक छोटी सी मखलूक, एक चींटी से भी कम समझते हुए आजजी की इंतहा है। और उस्तादों ने ये कहा है कि इस दुआ को पढ़ने के बाद खुशी ज़रूर मिलती है। हम तो इसको हदीस की बात पे रखें तो आप देखिएगा, पहले अपने आप को आजिज़ कहा, अपने बाप को आजिज़ समझा, अपनी माँ को आजिज़ समझा, तीन चीज़ें हो गई, नोट करें। चौथी चीज़ नासियती भी, यदि नासिया कहते हैं पेशानी को, कुरान में आता है ना, नासियतुन काज़िबतुन खातिया, पेशानी मुकद्दर मुराद है। मा दिन फिया हुक्म, मेरे मामले में तेरा हर हुक्म जो भी है, मुझे बीमारी लगी लगनी थी, मुझे दुख पहुंचा चाहिए था, मेरे पास औलाद नहीं हुई मैं इसी काबिल थी, मेरा बच्चा होके चला गया, जिंदगी का हर हुक्म, हर फैसला जो तूने मेरे बारे में किया, मैं उस पर खुश हूँ, मैं उस पर मुतमईन हूँ, बिल्कुल मुझे कोई रिजेंटमेंट नहीं है, मुझे किसी किस्म की कोई तेरे से शिकायत नहीं है, कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है कि सिवाय मी, मेरे ही साथ क्यों, और किसी के साथ क्यों नहीं, हमेशा मेरे ही साथ ऐसा क्यों होता है। ऐ अल्लाह, मैं ऐसा कोई जुमला बोलना तो दूर की बात है, मैं सोचना भी गवारा नहीं करती। यही है तस्लीम और रज़ा की इंतहा। और फिर आप देखिए, अदलुन फ़िया क़दाऊ का, बिल्कुल तुम ऐसा इंसाफ करता है, मैं हूँ ही इस काबिल, कोई तकलीफ़, कोई गम, कोई परेशानी आती है ना, तो ऐ अल्लाह मैं घबराती नहीं, मैं हूँ ही इस काबिल, बल्कि सस्ते छुट गए, मुझे तो कुछ ज़्यादा ही इससे होने का डर था, तूने तो मुझे थोड़े पे ही राज़ी कर दिया। अस्सलुक बिकुल्लिस्म मिन हुवा लकसम मई तभी ही नफसक। आप देखिए कि अल्लाह ताला के नाम, एक एक नाम इसके अंदर इतना खूबसूरत नाम, शायद ये लाखों नाम है कि करोड़ों नाम है, कलम टूट जाएंगे, समंदरों का पानी स्याही बन के ख़त्म हो जाएगा, लेकिन रब के कलिमात पूरे नहीं होंगे। और वक्त के साथ जितने इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूरोलॉजी और फलां फलां चीज़ें निकलती आ रही हैं, अल्लाह के नाम के, अल्लाह की खूबियाँ, उसकी सिफात बढ़ती जा रही हैं। एक एटम को तोड़ के अंदर देखें तो आपको उसमें अल्लाह ताला की कई सिफात दिखती हैं। तो आप कहते हैं कि अल्लाह, आपके वो खूबसूरत नाम, ख़ास नाम जो आपने ख़ुद अपने रखे, या उसको अपनी किताब में नाजिल किए, या अपनी मखलूक में किसको सिखाएं, कितनी मखलूकात हैं, 1,000 से ज़्यादा तो स्पीशीज़ हैं। आपने कभी सुबह उठ के चिड़ियों का चहचहाना सुना हो, मेंढक का टर्राना सुना हो अंधेरी रातों में, और एक अजीब सी विस्पर जंगलों और समंदरों के करीब जो होती है, ये सारी मखलूकात अपने रब को पुकारती हैं। जिससे भी कोई तुझे पुकारे, जो तूने किसी को सिखाया और इल्मे गैब में उसको अपने पास रखा, ये वो चीज़ होती है जिसको इंसान वाकई जब कहता है ना तो उसका दिल उसके साथ है। अच्छा, जब इतनी तारीफें कर ली, यानी मांगने से पहले रब की जब इतनी तारीफें की, तो मांगना फिर क्या आगे से सोचने की बात है। बंदा कहता है इसके आगे को गाड़ी मांगेगा, बंदा फरारी मांगेगा, मर्सिडीज मांगेगा, ये मांगे और वो मांगे, नहीं, इसके बाद बंदा मांगता क्या है, इस मांगने को जहन में रख लीजिए, अल्लाह अकबर कबीरा, अंत जलिल कुरान अलअजीम अरबी या कल्बी, अंत जल ये कि तू बना दे, जाल के लफ्ज़ में भी बहुत कुछ है, अंत जलिल कुरान अरबी या कल्बी व नूरा सदरी व जला हुजनी व जहाब हम्मी। चार चीज़ें हैं, आप अपने ऊपर लेकर सोचिए, कभी आपने मैंने इस तरह दुआ मांगे, आप जितना ज़्यादा इस सारे चीज़ को अपनी ज़िंदगी में महसूस करते जाएंगे ना, आपको कुरान उतनी बड़ी दौलत और नेमत लगती जाएगी। नूर असदरी, जला हुजनी, जहाब हम्मी, बाद जगह तो हम्मी के बाद एक और दुआ में गम्मी का लफ्ज़ भी आता है। तो इस दुआ में आपने कुरान को अपने दिल की बहार समझा। आप एक सवाल करती हूँ खुद से भी और आप भी कीजिए अपने आप से, ये क्या दुआ हुई? आप तो कहते हैं गम मुसीबतें दुख दर्द, ये आपको तब पता चलेगा जब आप किसी दुख और तकलीफ़ में इस दुआ को मांगेंगे कि कुरान दिल की बहार कैसे बनता है। कुरान दिल की बहार ऐसे बनता है कि जब भी आप किसी सिचुएशन में डाल दिए जाते हैं ना, कुरान की आयत से आपको उसका जवाब मिल जाता है। अपनों ने सताया, रिश्तेदारों के सताए हुए, सूरत यूसुफ खुल जाएगी दिमाग में और आप कहेंगे कि अल्लाह मेरे बहन भाइयों ने मुझे कुएं में तो नहीं डाला, यूसुफ को तो उन्होंने कुएं में डाल दिया, बस वो कुरान में खो जाएंगे और ये आंखों की ठंडक बन जाएगा। कोई बच्चा बिछड़ गया, कोई बच्चे का गम आ गया, आपको याकूब अलैहिस्सलाम याद आ जाएंगे, आपको झुटलाता है कोई दीन के नाम पे तो ये हज़रत नूह याद आएंगे, और अल्लाह के नबी के बारे में जितनी कुरान की आयतें हैं मक्की सूरतों में ख़ास तौर पर, एक एक आयत परत के परत खोलने वाली सूरत की तरह या आयत की तरह आपके सामने खुलती जाएगी और आपको यकीन आ जाएगा कि वाकई मेरे मालिक ने इस किताब में मुझे इतना भुला दिया कि मुझे भूल गया। पहले दौर में ऐसा होता था, आज भी उसकी मुख्तलिफ शक्लें होंगी, बच्चा रोए ना तो माँ फटाफट उसको किताब पकड़ाती थी, ये देखो ये क्या है, ये चिड़िया, ये तोता, आप तो वैसे ही चिड़िया तोते हाथों में पकड़े रहते हैं ना छोटे छोटे गैजेट्स की सूरत में। लेकिन बात बुलाने के लिए हमेशा से लोग दूसरी चीज़ में तवज्जो डाल देते हैं। कुरान आपका तन्हाइयों का साथी बन जाता है, आपके गमों की दवा बन जाता है, दिल ठंडा रहता है, गम जो मर्जी है पता ही नहीं, ऐसे लगता है एक बड़ी दीवार है आपके दिल और आपके गम के बीच में। पूरी यकीन दही के साथ कहूँगी कि आप कुरान से एक तरफ ताल्लुक़ जोड़ी रखें, यानी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तर्जमा याद कर रहे हैं, और ये कब होता है जब लफ्जी तर्जमा समझ आने लगता है, तफसीर बार बार सुन सुन के बहुत सारी आयतें समझ आने लगती हैं, फिर कुरान हकीकत में आपकी दोस्त आपका साथी बन जाता है, और भी यही कुरान कब्र में भी साथ जाएगा। शऊर के साथ इसको मांगिए और इसके जो मुश्किल लफ्ज़ हैं उसको रुक रुक के आपने मांगना है ताकि आपको ये दुआ याद हो जाए, और आपको अपने आप को इतना आजिज़ समझना है, इतना अपने आप को इसमें आपने खपा देना है कि लगे कि इसके सिवा और कोई दर नहीं, और आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा आप इन दुआओं के ऊपर गौर करेंगे ना, आपको महसूस होगा कि अल्लाह ताला ने इस कुरान में वाकई हर दर्द की हर दुख की दवा रख दी है। जैसे स्टोरीज नहीं होती, कुरान तो हर एक के लिए स्टोरी है ना, बच्चा पढ़ेगा तो ये गुड नाइट स्टोरीज हैं, ज़रा सा बड़ा होता हुआ जवान बच्चा पढ़ेगा तो उसके लिए ये फिक्शन है, ज़रा और बड़ा होता है फिर मेच्योरिटी, आपके साथ साथ ये किताब बड़ी होती है और आप महसूस करेंगे इस चीज़ को कि वाकई आपके लिए ये कुरान बेस्ट फ्रेंड बनता है।
اللهم إني عبدك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك وابن أمتك ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك اللهم إني عبدك وابن عبدك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عبدك وابن أمتك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ماض في حكمك عدل في قضاؤك عدل في قضاؤك फिर इंशाल्लाह रिपीट करेंगे. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ماض في حكمك عدل في قضاؤك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن أن تجعل القرآن قلبي أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري ونور صدري وجلاء حزني وجلاء وذهاب همي وذهاب همي اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك اللهم عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك ناصيتي أعضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، ونور صدري، وجلاء حزني، وجلاء حزني، وذهاب همي، وذهاب همي. آمين.
الحمد لله. थोड़ा थोड़ा करके याद कर लें, हो सकता है किसी का ये सवाल हो के ज़ुबानी ना आती हो तो देख के मांग लें, बिल्कुल कोई हर्ज नहीं, लेकिन जब भी मांगें शऊर से मांगें और अपने आप को अल्लाह ताला के सामने खड़ा करके फिर महसूस करें कि आप इसमें अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं।